बताइए कि ये जो डॉक्टर है आपके नाम में, कोई खास वजह?
हाँ, वैसे तो जो है डॉक्टर वाली मुझमें यही खूबी है कि मेरा हैंड राइटिंग डॉक्टर
खराब
वाला है,
है? अच्छा,
बाकी तो और कोई खूबी नहीं है। लेकिन अक्सर ये था कि जब मैं यूनुस भट्ट के नाम से लिखता था तो हमारे इस नाम के एक और साहब जो थे वो अक्सर दूसरों को कहा करते थे कि मैं लिखता हूँ। मुझे ये यकीन था कि वो कुछ भी हो सकते हैं, डॉक्टर नहीं हो सकते।
वैसे इससे पहले जब आप सिर्फ लिखते थे, पब्लिश होते थे, तो उस वक्त कितने लोग आपको जानते थे?
नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसे लगता है जब भी मैं कोई मुझे मेरा कोई फैन मिलता है और मेरे साथ को बहुत इज्जत से पेश आता है तो मुझे यकीन होता है कि ये मेरी किताबों का राइट जो है ना वो फैन है, उसने मेरी किताबें पढ़ी हुई है।
अच्छा, तो ये ख्याल क्यों है आपको कि अब लोग आपसे इज्जत से पेश नहीं आएंगे?
असल में होता है कि जो टेलीविजन पे लोग देखते हैं तो वो देख के मजाहिया होने की कोशिश करते हैं, तो जो किताब जिसने पढ़ी होती है वो बड़ा एहतराम से पेश आता है।
तो कभी कोई वायलेंट रिएक्शन आपकी तहरीरों का?
असल में है कि शुरू में तो मैं ये फायदा उठाता होता था कि जो मेरा मजा होता था जरा मुश्किल होता था। तो बल्कि एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है, मैंने एक जमाने में एक कॉलम लिखा एक गुजरांवाला के एक पॉलिटिशियन के बारे में। तो सुबह सुबह मॉर्निंग पे जो उनका फोन आया तो वो बहुत था कि बड़ा अच्छा भाई आपने कॉलम लिखा, बड़ा मजा आया। और शाम को उन्हीं का फोन आया और वो शदीद गुस्से में थे कि वो तो यार मेरे जो है वो लोगों ने आके मुझे बताया कि आपने तो मेरी बड़ी बेइज्जती की हुई है।
तो वो किसी और के खिलाफ समझ रहे हो?
मजाक की जो है इतनी परतें होती हैं, इतनी डायमेंशन होती हैं कि फौरी तौर पे जो है मेरा मजाक जो होता है वो जरा थोड़ी देर के बाद समझ आता है। तब तक वैसे भी गुस्सा जो होता है या तो बंदे का उतर चुका होता है या मैं वहां से गायब हो चुका होता हूँ।
आप अब प्रैक्टिस करते हैं या नहीं है?
नहीं, मैंने जो है वो प्रैक्टिस जो है वो शुरू में की, उसके बाद फिर जो है मैं ये सोचता था शुरू से ही कि बंदा उस काम के लिए पैदा होता है, उस काम के लिए बना होता है जिसको करते हुए उसको थकावट ना हो। तो राइटिंग वह काम था जो मैं 48 घंटे, 72 घंटे या कई कई दिन काम करता हूँ तो मुझे थकावट नहीं होती, मैं फ्रेश होता हूँ।
वैसे बड़ी आसानी से आपने ये कहा कि ऐसे लगा कि बस जरा उठे थे और जाके जरा सी डॉक्टरी कर ली और फिर सोचा कि चलो क्या है, चंद रोज की बातें छोड़ देते हैं। डॉक्टर बनना खुद एक बड़ी मशक्कत की बात है, तो कैसे इतने साल जो आपने गुजारे तो बगैर किसी पैशन के तो नहीं गुजारे होंगे?
नहीं, बेसिक जो होता है इल्म बजाते खुद एक पैशन होता है, फिर इंसान को समझना वो एक शुरू से उसकी जुस्तजू थी। फिर मैंने साइकेट्री में काम किया बहुत अरसा, तो एक तो मेडिकल ने मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की आदत डाली और इंसानों को समझने की आदत डाली, उसके मुझे बहुत फायदे हुए। तो वो एक बेसिक जो होता है नॉलेज और इल्म जो है, इल्म तो हासिल करना चाहिए, बाकी एक कुछ सलाहियतें होती हैं अल्लाह की तरफ से आपके अंदर होती हैं तो उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए।
तो अम्मा अब्बा की अक्सर पाकिस्तान में बड़ी ख्वाहिश होती है कि बच्चा हमारा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। अब तो खैर थोड़ी सी ख्वाहिशात बदल गई हैं, लेकिन उस जनरेशन में तो ये बताइए कि कितनी मायूसी हुई वालदेन को आपके डॉक्टर ना रहने से?
मतलब शुरू में उनको थोड़ा सा लगा, क्योंकि उस वक्त जो है जो लिखने वाला प्रोफेशन था उसमें जो एक रिवायत थी कि ये लोग तो बस कलम और कागज इनके पास होता है, यही इनका सरमाया होता है, हालात इनके अच्छे नहीं होते। लेकिन यह है कि अब एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के आने से ये हुआ कि जो लिखने वाला है वो भी आसूदा हो गया, वो भी हालात उसके बेहतर हो गए, तो फिर घर वाले जो है उनके भी मूड और तेवर बेहतर हो गए।
जब वो नाराज होती है ना किसी से भी तो फिर अपना पका हुआ खाना खिलाती है।
खाने का तो सिर्फ बहाना था नुसरत, वो तो सिर्फ मुझे बुला के ये बताना चाह रही थी कि शायर उसे उसके कितने ताल्लुकात हैं। एक बहुत बड़ा शायर बुलाया हुआ था उसने खाने पर, उसने मिसेस जमील पर नज़म भी लिखी।
मिसेस जमील पर नज़म लिखी? मामा उनके घर कागज नहीं है लिखने के लिए।
वो ये भी कह रही थी कि वो उनकी शादी का सेहरा भी उसी शायर ने लिखा है।
मामा सेहरा तो पहना जाता है, इस पर लिखा कैसे जाता है?
क्रिएशन जो है वो तो ख्यालात का ही है ना नाम, तो अल्लाह की तरफ से होता है, बैठ जाते हैं ख्यालात आ जाते हैं तो लिख लेते हैं।
आपने कहा कि मैंने कुछ दिन साइकेट्री में काम किया, तो क्या उस वहां से इंसानों की नफ्सियात और ये जो कुछ जानने का मौका मिला आपको?
हाँ, बहुत साइकेट्री में तो काम करने का बड़ा फायदा हुआ, कम से कम एक चीज का फायदा हुआ क्या, अब किसी पे गुस्सा नहीं आता। अमल उसका जो है आपकी नीयत पे होता है, क्योंकि मैं इन लोगों का बड़ा एहतराम करता हूँ तो मुझे कभी भी जाती तौर पे उनसे कोई ऐसा नहीं होता। मैं تو اس پہ اپنے ایک سٹائل میں کرٹیسزم کرتا ہوں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بہت زیادہ کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو. میرے دل میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں کوئی انسلٹ کر رہا ہوں, بلکہ مجھے جس شخص پہ غصہ آتا ہے اس کا میں اسکٹ بناتا ہی نہیں ہوں جب تک میرا غصہ نہیں اتر جاتا. یہی وجہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود پروگرام کی کریڈیبلٹی ہے اور اس کو دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں
اور انتظار کرتے ہیں کہ ان کے رائیول کی باری کب آئے گی.
اکثر یہی ہوتا ہے کہ تعریف کرنی ہو تو وہی کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارا جو مخالف ہے اس کا آپ نے جو بنایا تھا وہ بہت اعلیٰ.
ویسے ڈاکٹر صاحب ایک خاکہ اپنا بھی بنائیے آپ.
ایک میں نے اپنے ہیلتھ کے بارے میں لکھا تھا, ہوتا ہے کہ میری والدہ جب مجھے بچپن میں اسکول لے کے جاتی تو محلے والے سمجھتے اسپتال لے کے جا رہی. پھر ایک پہلوانوں کے بارے میں لکھا کہ میں بچپن میں گجرا والا میں پیدا ہوا تو انہوں نے روایت ہوتی تھی کہ بچے کو پہلے اکھاڑے بھیجتے تھے, تو مجھے اکھاڑے بھیجا گیا تو میری صحت دیکھ کر جو استاد پہلوان تھا اس نے کہا کہ تمہاری ورزش کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم روزانہ دو کشتیاں دیکھ لیا کرو.
تو اکھاڑے جاتے تھے واقعی آپ؟
ہاں ہاں, مطلب شروع میں گجرا والا میں, آپ جو گجرا والا میں پیدا ہوا آج سے 20-25 سال پہلے تو وہ اکھاڑے نہیں گیا تو پھر گجرا والا میں کہاں پیدا ہوا.
یعنی لاہور, وہ محاورہ کے لاہور جس نے نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا, وہاں اکھاڑا جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں پیدا ہوتا.
گجرا والا کے جو ہے نا, کیونکہ وہاں پہلوان اور بٹ دونوں مشہور ہیں, اور میں ایک دفعہ میں نے لکھا میں کہ بٹ گجرا والا میں اتنے ہوتے ہیں کہ میں بچپن میں پریشان ہوتا کہ یہاں اتنے بٹ کہاں سے آتے ہیں. تو پھر میں نے ایک جو ہے نا روڈ پہ دیکھا کہ ایک بہت بڑی فیکٹری تھی, اس کے باہر لکھا ہوا تھا بٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری. میں نے بچپن میں سوچا, میں نے کہا یہاں بٹ بنتے ہوں گے جو اتنے بٹ یہاں ہیں.
اچھا,
تو بندہ گجرا والا میں پیدا ہو جائے پھر اسے بٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا.